धवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वैचायाणं। नमो लोये सवसाहूणं। कम्मठजनियवेयण ओहि समुत्तिन्नये जिने नमिं वेयणमहारियारं विविहरियारं परोहेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये षटखंडागम का ये चतुर्थ खंड है, इसका नाम है वेदना, और इसमें अभी अपना वेदना अनुयोग द्वार चल रहा है, और इस 10वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 19 पर हम आ गए हैं। ये वेदना नाम का जो महाअधिकार है, उसमें हमने देखा था कि 16 अनुयोग द्वार है। वो 16 अनुयोग द्वारों में से हमने पहले 3 देखे थे, वेदना निक्षेप, वेदना नय विभाषणता, वेदना नाम विधान। अब यहाँ वेदना द्रव्य विधान कहेंगे। नाम विधान यानी वहाँ तो 8 कर्मों के नाम बताए थे, ज्ञानावरणी वेदना वगैरह वगैरह, और कौन से नए से किस कौन से नाम को स्वीकार है वो भी बताया था, जैसे रुजु सूत्र नाम नय की अपेक्षा उस समय वो उदय रूप जो लिया था, और संग्रह नय में एक वेदना इतना ही लिया था। रुजु सूत्र में केवल वेदनीय को ही वेदना कहा था, बाकी को नहीं, और संग्रह नय में वेदना एक ही नाम स्वीकार था, 8 भेद नहीं, और नैगम व्यवहार में 8 भेदों के नाम बताए थे। फिर ये तो हो गई ना नाम विधान में। अब ये चौथा जो है वेदना दव्य विधान। दव्य विधान यानी उन कर्मों की परमाणु की संख्या वगैरह उसमें आ जाती है, उसकी बात विशेषता बताएंगे यहाँ पर। तो उसमें 3 अधिकार है, हमने देखा था कल, पद मीमांसा। पद यानी जो उत्कृष्ट पद है, अनुत्कृष्ट है, जघन्य है, अजघन्य है, वो किसका किसकी अपेक्षा जघन्य अजघन्य लेना, तो ज्ञानावरण कर्म परमाणु कितने हैं उसकी अपेक्षा उसको उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहते हैं। तो वहाँ उन्होंने वो 13 पद बताए थे, पद भेद में उसमें व्यवस्था पद और भेद पद ऐसे 2 बातें बताई थी, और भेद पद में उन्होंने 13 नाम बताए थे, यानी इतने अलग अलग उसके हो सकते पॉसिबिलिटीज, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य आदि सादि अनादि वगैरह वगैरह ध्रुव अध्रुव। ये बात हमने यहाँ 19 पृष्ठ पर पढ़ी थी। एक है पदमीमांसा, फिर उस पद के स्वामी, पहले जो 4 है उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, उसके स्वामी कौन है उसकी चर्चा होगी। उसके बाद अल्पभूतव उसमें क्या है, उत्कृष्ट वाले जो उत्कृष्ट का प्रमाण कितना है अनुत्कृष्ट का, उसमें अल्पभूतव लगाएंगे। अब यहाँ ये बात फिर से हम 19 पृष्ठ पर पढ़ते हैं। ये तीसरी लाइन है ना, उत्कृष्ट आदि रूप भेद पद का अधिकार है। हाँ, ये हमने प्रस्तावना से पढ़ेंगे। ये पहले हमने नाम पढ़ते हैं, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य अजघन्य, सादि अनादि, ध्रुव अध्रुव, ओज और युग्म। ओज का अर्थ है विषम संख्या और युग्म का अर्थ होता है सम संख्या। अभी उसके भी और भेद होते हैं, ओज के तेजोज और कलियोज, और युग्म के भी कृत युग्म और बादर युग्म। पेज नंबर 19। हाँ, ये 19 पृष्ठ पर हम ये 16 नाम, सॉरी 13 नाम हमने देखे। हाँ, तो ये किसको क्या कहना, वो प्रस्तावना का 3 नंबर का पेज निकालो। उसमें फुट नोट देखना, तीन नंबर के पृष्ठ पर फुट नोट देखो। ओज का अर्थ हो विषम संख्या, जो अभी मैंने बताया था ना, मिला आपको प्रस्ताना का तीसरा पेज। यानी जो विषय सूची है अनुक्रमणिका, उसके भी पूर्व में है वो, मिला कि नहीं। फुटनोट देखना उसके। ओज का अर्थ है विषम संख्या, विषम समझ रहे हैं, एक तीन पांच सात, ये क्या होती है, विषम संख्या है। अब वो हो गया अनंतों में संख्या, परंतु उसमें भी सम विषम ऐसे भेद हो सकते हैं। तो उसके दो भेद है, कलियोज और तेजोज। तो कहते जिस राशि में चार का भाग देने पर तीन अंक शेष रहते हैं वह तेजोज है। जैसे अगर 16 संख्या है तो सम संख्या है, चार का भाग तो निशेष भाग जाता है। 15 ही विषम संख्या है, उसको चार से भाग देंगे तो तीन बाकी रहते हैं, उसको तेजोज कहेंगे। और 13 भी एक संख्या है तो चार से भाग देने पर एक बाकी रहते हैं। तो जिसमें चार का भाग देने पर एक अंक शेष रहता है वह कलियोज है, जैसे 13। यानी ओज के ये दो भेद हो गए। हम प्रस्तावना का तीसरे पृष्ठ पर ओज और युग्म का अर्थ देख रहे थे। ओज यानी विषम संख्या और युग्म यानी सम संख्या। युग्म में भी दो भेद है, उसी वो फुटनोट को ही देख रहे, कृत युग्म और बादर युग्म। यानी बादर ये द्वापर शब्द का बिगड़ा हुआ प्रतीत लगता है उनको। अभी उसके तीसरी लाइन में, जिस राशि में चार का भाग देने पर कुछ शेष नहीं रहता वह कृतयुग्म राशि, जैसे 16 संख्या। अब 14 संख्या भी सम है, परंतु जिस राशि में चार का भाग देने पर दो अंक शेष रहते हैं वह बाद प्रस्तावना का तीसरा पेज फुटनोट। तो बादर युग्म और कृतयुग्म ऐसे दो हमने देखे थे। यानी ओज यानी विषम और युग्म यानी सम। ओज में तेजोज और कलियोज, तेजोज में तीन बाकी रहते हैं और कलियोज में एक बाकी रहता है। ते में तीन करना, युग्म में कृत युग्म पूरे निशेष भाग जाता है चार से। और जैसी 14 राशि है उसको क्या कहेंगे, बादर युग्म। ये हमने 19 पेज पर पृष्ठ हम पढ़ रहे थे। अब किसको क्या कहना यहाँ फिर भी बता देंगे। नेक्स्ट पेज पर आएगी बात ये। फिर अब यहाँ हम पढ़ते हैं, तो ये जो 13 पद बताए उन्होंने और उनकी मीमांसा करना है, उसके बारे में प्रश्नोत्तर रूप से वो उत्कृष्ट होता है क्या, जो उत्कृष्ट है वो आदि है क्या, सादी है क्या, अनादि, इस तरह से उसकी चर्चा चलेगी। यानी एक एक पद लगा लेकर उसमें अन्य 12-12 पद घटित करेंगे, वो सारे पद मीमांसा में आ जाता है। अब नया पैराग्राफ वो सब बताएंगे। हाँ, यह देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ ये तीन ही बताए ना, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व। तो कहते हैं यहाँ संख्या, गुणकार, ओज, स्थान और जीव समुदाहार, ये पांच अन्य अनुद्वार और वक्तव्य है, यानी बताना चाहिए। अब वो वाक्य पढ़ने के पहले नीचे से दूसरी लाइन पढ़ो, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, यानी कितने ही आचार्यों का ये मत है। अभी हम रेगुलर 19 पेज पर आए। आज हमने पेज नंबर 19 पर नए पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ से शुरू किया। हाँ, यह देशामर्शक सूत्र है। अच्छा, काल नहीं गया आपने, ये हमारा वेदना द्रव्य विधान शुरू हुआ है। वो वेदना द्रव्य विधान में पद मीमांसा, पद यानी वो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, ये पद कहलाते हैं। और उस पद की मीमांसा यहाँ होगी। जैसे ज्ञानावरण में जो उत्कृष्ट द्रव्य है, द्रव्य विधान है, उसकी संख्या लेना परमाणुओं की, तो उत्कृष्ट द्रव्य होता है कि अनुत्कृष्ट होता है, कि जघन्य होता है कि अजघन्य होता है, इस तरह से उसमें उसकी मीमांसा चलेगी। प्रश्न उत्तर के रूप में उसकी चर्चा होगी, उसको पद मीमांसा अधिकार करते। तो यहाँ तो तीन ही अधिकार बताए थे वेदना द्रव्य विधान में, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत्व। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि, देखो पेज नंबर 19 नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखा है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। तो उनका क्या कहना है वो अभी हम पढ़ेंगे कि यह देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ संख्या, गुणकार, ओज, स्थान और जीव समुदाहार ये पांच अन्य अनुयोग द्वार और वक्तव्य ने और ये भी बताना चाहिए था, क्योंकि इनके बिना संपूर्ण प्ररूपणा नहीं हो सकती, ये कुछ आचार्यों का ऐसा मत है। इसलिए उन पूर्वोक्त तीन अनुयोग द्वारों के साथ यहाँ आठ अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है कहा भी है, यानी उन्होंने पांच और अन्य चाहिए ऐसा कहते हैं और फिर टोटल आठ होना चाहिए ऐसा उनका कहना था, इसलिए उन्होंने गाथा भी उद्धृत की है। पदमी मांसा संखा गुणयारोचौत्थयम् च सामित्तम् ओजो अब्बा बहुगम ठाणानि अजीव समुहारो के पदमीमांसा संख्या गुणकार चौथा स्वामित्व ओज अल्पभूत्व स्थान और जीव समुदाहार ये आठ अनुयोग द्वार है। कहते ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं परंतु वह घटित नहीं होता। वीरसेन स्वामी तो कहते हैं कि ये घटित नहीं होता ऐसा, उसी को आगे स्पष्ट करते हैं वो क्यों नहीं घटित होता, तो वो अभी यहाँ बताएंगे। ओज अनुयोग द्वार तो पृथक वक्त है नहीं, क्योंकि ओज और युग्म प्ररूपणा की अविनाभावी पदमीमांसा में उसका अंतर्भाव हो जाता है। पदमीमांसा में वो ओज और युग्म तो पद बता ही गए, तो उसको अलग से उसका अनुयोग द्वार नहीं कह सकते। एक बात, संख्या अनुयोग द्वार भी पृथक नहीं है। 20 पृष्ठ पर आया अभी मिला ना आपको, हाँ, क्योंकि उपसंहार प्ररूपणा के अविनाभावी स्वामित्व में उसका अंतर्भाव हो जाता है, यानी किसको कौन सा उत्कृष्ट पद किसको होगा वगैरह वगैरह उसमें संख्या आ जाएगी। गुणकार अनुयोग द्वार भी भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका गुणकार के अविनाभावी अल्प बहुत्व में अंतर्भाव हो जाता है, यानी किस पद से कौन सा पद कितने गुणा है ऐसा अगर कहेंगे तो उसमें वो तो अल्प बहुत्व में बात आ ही जाती है। स्थान अनुयोग द्वार भी भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका स्थान प्ररूपणा के अविनाभावी अजघन्य अनुत्कृष्ट द्रव्य का कथन करने वाले स्वामित्व अनुयोग द्वार में अंतर्भाव हो जाता है। जीव समुदाहार भी भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका भी जीव के अविनाभावी चार प्रकार के द्रव्य का कथन करने वाले स्वामित्व अनुयोग द्वार में अंतर्भाव हो जाता है। चार प्रकार का द्रव्य नहीं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, वो तो जीवों की बात है ना, कौन से जीवों को कौन सा द्रव्य उत्कृष्ट होता है वो उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए तीन अनुयोग द्वार ही है ये। इस कारण पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत्व ये तीन ही अनुयोग द्वार है यह सिद्ध होता है। ये तीन ही है ये उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि प्रश्नकार ने पूछा था कि और भी होना चाहिए। अब दो नंबर सूत्र पढ़ेंगे। पदमीमांसाए नानावरणीय वेदना वेदना दौवदो किम उक्कस्सा किम अनुक्कस्सा किम जहन्ना किम अजहन्ना। पदमीमांसा का प्रकरण है, ज्ञानावरणीय वेदना द्रव्य से क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है। उन्होंने तो 13 पद बताए थे, उसमें से यहाँ चार नाम लेके प्रश्न पूछा गया है। यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि चार ही बातें पूछे और पदमीमांसा तो 13 की मीमांसा होनी चाहिए, इसलिए कहते देशामर्शक है यह। अतः यहाँ अन्य 9 प्रश्न और करने चाहिए, क्योंकि 13 पद बताए थे, ये चार है, फिर सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव वगैरह, युग्म, ओज वगैरह सब जो बता पूछे थे वो 13 के 13 होने चाहिए, इसलिए 9 प्रश्न और भी पूछने चाहिए। जैसे ज्ञानावरणीय वेदना, यहाँ क्या लिखा था, द्रव्य से, द्रव्य की अपेक्षा यानी वो परमाणु की संख्या की अपेक्षा पूछ रहे हैं, उत्कृष्ट है क्या, अनुत्कृष्ट है, जघन्य है क्या, अजघन्य है, फिर पूछेंगे सादी है क्या, अनादि है, ध्रुव है क्या, अध्रुव है, सब पूरे 13 पद उसमें लगा लेना। और तेरा प्रश्न पूछना। यदि कहा जाए इन्हें प्रश्न और करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना पृच्छा सूत्र की, पृच्छा सूत्र प्रश्नात्मक जो सूत्र है, अपूर्णता का प्रसंग आता है। यदि कहा जाए इस तरह तो महाकर्म प्रकृति प्रावृत के पारगामी यानी जानकार जो है भूत बलि भट्टारक असंपूर्ण सूत्र के कर्ता प्राप्त होते हैं, यानी उन्होंने सूत्र अधूरे बनाए ऐसा अगर कोई कहता है तो कहते वह बात नहीं है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। पदमीमांसा उन्होंने 13 पद बताए हैं और यहाँ देशामर्शक में उन्होंने 4 नाम लिए हैं, तो उसमें बाकी सब है ऐसे गर्भित है। इसलिए ज्ञानावरणीय वेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, ये कौमा कौमा देना जहाँ नहीं है वहाँ, क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है। ओज और युग्म का अर्थ याद है ना, ओज यानी विषम, युग्म यानी सम। क्या ओम है, अभी ओम वगैरह का अर्थ बताएंगे, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार 13 पद विषयक यह पृच्छा सूत्र समझना चाहिए। इस सूत्र में तो 4 नाम बताए, परंतु वो 13 ही संबंध में यहाँ प्रश्न है ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानावरणीय वेदना के विषय में विशेष के बिना सामान्य रूप से, विशेष के बिना यानी ज्ञानावरणीय पूरा ही कर्म की बात की, वो ज्ञानावरणीय का तो उत्कृष्ट पद है कि जगन्य उसकी बात नहीं है, सामान्य से ज्ञानावरणीय कर्म इटसेल्फ उसका जो द्रव्य है वो कैसा है ये पूछा गया। इसलिए कहते हैं विशेष के बिना, यानी जो विशेष जो 13 अलग अलग पद बताए हैं उस पर ये प्रश्न नहीं पूछे, ज्ञानावरण की वेदना उस पर ये 13 प्रश्न पूछे। तो विशेष के बिना सामान्य रूप से प्ररूपणा करने पर 13 पृच्छाएं कही गई है, इसका अर्थ समझ में आता है। ज्ञानावरणीय शब्द पर यानी पूरे ज्ञानावरणीय के द्रव्य जो है, संख्या उसकी, परमाणुओं की संख्या, वो उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, जघन्य, ये सब 13 प्रश्न उस पर पूछे हैं। इसलिए उसको सामान्य ज्ञानावरणीय वेदना के ऊपर ये प्रश्न पूछे गए, ये इसका अर्थ होता है। किंतु सामान्य विशेष का अविनाभावी होता है, यानी जहाँ सामान्य वहाँ विशेष होता ही होता है, विशेष के बिना सामान्य नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं, ऐसा समझ करके इसी सूत्र से सूचित होने वाली अन्य 13 पद पृच्छाओं को कहते हैं, वे इस प्रकार है। क्या कहना चाहते हैं? अब उसमें से एक एक पद लगाओ, ये तो ज्ञानावरणीय वेदना इटसेल्फ ये एक कॉमन रखकर 13 प्रश्न पूछे। अभी जो 13 अलग अलग पद बताए ना, उसमें एक एक के ऊपर ये प्रश्न पूछो, कैसे उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना क्या उत्कृष्ट होती है, क्या अनुत्कृष्ट होती है, कि जघन्य होती है, कि अजघन्य होती है, कि सादी होती है, कि अनादि होती है, यानी उस पर ऐसे ऐसे 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी उत्कृष्ट को कॉमन फिक्स रखकर उसमें 12 प्रश्न पूछो इस तरह से। देखो हम पढ़ेंगे उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार 12 पृच्छाएं उत्कृष्ट पद विषयक होती है। अभी एक एक पद को 13 में से एक एक पद पर अन्य 12 पद लगा लो, यानी अन्य 12 प्रश्न लगा लो। पहले क्या किया था, ज्ञानावरणीय वेदना के ऊपर 13 प्रश्न पूछे थे, अब क्या करना है, एक एक पद के ऊपर 12 प्रश्न पूछना। तो एक पद पर 12 प्रश्न और ऐसे पद कितने हैं, 13, तो 13 × 12 उसके प्रश्न हो गए। फिर से ज्ञानावरणीय की बात है तो उसमें 13 प्रश्न पूछे। अब ज्ञानावरणीय का एक एक पद ले लो, जैसे उत्कृष्ट पद लिया उसमें अन्य 12 प्रश्न पूछे, अनुत्कृष्ट पद लिया तो उसमें उत्कृष्ट है क्या, जघन्य है क्या, अजघन्य, रिमेनिंग 12 प्रश्न पूछे, जघन्य की बात है, जघन्य ज्ञानावरणी वेदना, उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, फिर अजघन्य है कि साधी है कि अनादि है, इस तरह से एक एक पद लेकर उस पर अन्य अन्य 12-12 प्रश्न पूछना। पहले हमने ज्ञानावरणी पर 13 प्रश्न पूछे, वो 13 की संख्या याद रखो, फिर जो 13 पद है हर एक पद पर 12-12 प्रश्न पूछे, 13 × 12 यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 169 हो जाएगी टोटल, 156 13 × 12 और ओरिजिनल 13 प्रश्न पूछे थे वो मिलकर। ज्ञानावरणी पर 13 और 13 × 12 कितने होते, 156, तो दोनों सब मिलकर 169 हो जाएंगे। देखो इस प्रकार 12 पृच्छाएं उत्कृष्ट पद विषयक होती है, इसी प्रकार शेष पदों में से भी प्रत्येक पद विषयक 12-12 पृच्छाएं करनी चाहिए। यानी 13 × 12 हो गए ना, पहली तो 13 थी और ये 13 × 12 हो जाएगी। तो 156 हो जाती है। तो यहाँ सब पृच्छाओं का योग, सब पृच्छाएं पहली तो 13 थी और ये 156, 169 होता है। ये समझ में आए ना, ये कैसा हिसाब किया, ज्ञानावरणीय पर 13 प्रश्न पूछे, फिर एक एक पद पर 12-12 प्रश्न पूछे, यानी उसको छोड़कर 12 जो रिमेनिंग 12 है उसके उसके ऊपर लगाना है। इसी कारण इस देशामर्शक सूत्र में 13 सूत्र और प्रविष्ट है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। 13 सूत्र और प्रविष्ट है ने 13 पदों में, पहला तो एक ज्ञानावरणी के बारे में 4 पद पूछे, अब कहें उत्कृष्ट ज्ञानावरण में क्या है, अनुत्कृष्ट ज्ञानावरण में क्या है, जगन में, ऐसे और 13 सूत्र उसमें बनाएंगे। समझ में है ना इसका, इस पैराग्राफ का अर्थ। अब ये यहाँ पूछा क्या गया था, ज्ञानावरणीय वेदना द्रव्य से उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, उसका उत्तर 3 सूत्र में दे रहे, उक्कस्सा वा अनुक्कस्सा वा जहन्ना वा अजहन्ना वा, यानी ज्ञानावरणी वेदना इतनी पूछी, क्या उत्कृष्ट हो सकती है क्या अनुत्कृष्ट हो सकती है, तो बताएंगे सभी हो सकती है, उत्कृष्ट भी है। अब वो किसको होता है क्या होता है वो तो स्वामित्व में बताएंगे, मन होती है कि नहीं होती है वो यहाँ बताएंगे, जिसको कहे ना वो होती है बस इतना ही यहाँ कहना है, जिसको हम हमेशा वो सत प्ररूपणा पहले कहते है, फिर किसको होती है उसकी चर्चा बाद में। उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है और अजघन्य भी है, यह भी देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ शेष 9 पद कहने चाहिए। यानी क्या कहेंगे, अभी हमने जो देखा था कि साधी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है, ध्रुव के नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हमेशा वो नहीं पाया जाएगा उत्कृष्ट पद, सभी पद नहीं लगाएंगे लगेंगे उसमें, उत्कृष्ट पर अगर लगाने हैं सामान्य ज्ञानावरणी पर तो सभी पद लगेंगे, परंतु उत्कृष्ट आगे वाले जो सूत्र बनेंगे उसमें सभी पद नहीं लगेंगे, ज्ञानावरणी पर लगेंगे, देशामर्शक होने से ही शेष 13 सूत्रों का यह अंतर्भाव कहना चाहिए। उनमें से पहले प्रथम सूत्र की प्ररूपना की जाती है, यानी टोटल 14 सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र ज्ञानावरणीय के ऊपर है, बाद में एक एक पद के ऊपर एक एक सूत्र होगा, तो ज्ञानावरणीय पद की बात अभी बता रहे हैं कि ज्ञानावरणीय वेदना स्यात उत्कृष्ट है, स्यात ने हमेशा वो उत्कृष्ट नहीं होगी ना, तो जिस किसी के होती है तो स्यात किसी अपेक्षा उत्कृष्ट है, क्योंकि अब वो उत्कृष्ट किसको होती है वो जरा बता रहे हैं। पहले हमने देखा था गुणित कर्मांशिक जीव होता है, याद है हमने, उत्कृष्ट योग से बहुत बार जन्मा वगैरह वगैरह, पर्याप्त में ज्यादा भोग किए, संकलेश परिणाम में नीचे के स्थितियों में कम द्रव्य, ऊपर के स्थितियों में ज्यादा, इस तरह से वो सब कंडीशंस लगा लेना, उसको गुणित कर्मांशिक कहते थे। और नरक में लास्ट 2 समय में उत्कृष्ट योग धारण किया उसने और उत्कृष्ट संकलेश किया वगैरह वगैरह, यही कहते, क्योंकि भवस्थिति के अंतिम समय में वर्तमान, वर्तमान यानी विद्यमान, गुणित कर्मांशिक सप्तम पृथ्वी के नारकी के उत्कृष्ट द्रव्य पाया जाता है। यहाँ तो एक ही वाक्य में बताया, परंतु उसके गुणित कर्मांशिक के जो जो कंडीशन है वहाँ तो छह आवास कहते उसको, भवावास वगैरह वगैरह, संकलेश आवास है, योगावास है, योग कितना होता है, अध्यावास है, अनेक बातें हैं उसके अंदर। अब 22 पृष्ठ पर आ रहे हैं। स्यात अनुत्कृष्ट है वो ज्ञानावरणीय वेदना, ये शब्द हर जगह समझना। तो जब उत्कृष्ट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अनुत्कृष्ट, क्योंकि कर्म स्थिति के अंतिम समयवर्ती गुणित कर्मांशिक नारकी को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र अनुत्कृष्ट द्रव्य पाया जाता है। यानी जो उत्कृष्ट नहीं है उन सबको क्या है, अनुत्कृष्ट द्रव्य है। अब स्यात जघन्य है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म द्रव्य की अपेक्षा हम कह रहे हैं स्यात जघन्य है। अभी जघन्य किसको होगा, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक जीव के क्षीण कषाय के अंतिम समय में, क्योंकि वो तो निर्जरा करते करते करते।
यहाँ एक प्रश्न है।
हाँ,
ये पहली लाइन में स्यात अनुत्कृष्ट है क्योंकि कर्म स्थिति के अंतिम समय वर्ती, तो कर्म स्थिति का अंतिम समय क्या समझना,
यहाँ भवस्थिति का लिया था, वहाँ कर्म स्थिति का लिया, यहाँ भवस्थिति चरिम, भवस्थिति के अंतिम समय में वर्तमान, और वहाँ कर्म स्थिति के अंतिम समय वर्ती गुणित कर्मांशिक नारकी को छोड़कर, वही बात कहना चाहते हैं शायद। हाँ, 30 कुड़ाकुड़ी का बंद करने वाले ने, वो गुणित है, क्षपित नहीं, गुणित में लिया है। यानी जो देखो देखो, जिसको हमने पहली लाइन में पढ़ा उत्कृष्ट किसको होता है, और यहाँ कह रहे हो उस उत्कृष्ट छोड़कर बाकी सब अनुत्कृष्ट है, वहाँ भवस्थिति कहाँ या कर्म स्थिति कहाँ, यानी जीव तो वही है, एक जगह उसको भवस्थिति का अंतिम समय में विद्यमान लिखा है और यहाँ कर्म स्थिति के अंतिम समय वर्ती लिया है। क्योंकि गुणित कर्मांशिक को छोड़कर, अब गुणित कर्मांशिक के लिए वहाँ भवस्थिति के अंतिम समय में विद्यमान को गुणित कर्मांशिक कहा, और यहाँ उसी जीव को कर्म स्थिति के अंतिम समय में नाम दिया है। वो कर्म स्थिति क्यों लिखा है मुझे भी पता नहीं चला। नारकी का अंतिम समय लेना है। हाँ, यानी उस समय उसका कितनी स्थिति बाकी है, कर्मों की पोजीशन, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश से उसने उत्कृष्ट समय प्रबद्ध और उत्कृष्ट स्थिति भी बांधी। क्योंकि अभी गुणित कर्मांशिक है वो तो बांध ही रहा है ना, उसमें कोई अंतिम समय ने कुछ स्थिति बंद की बात नहीं है। हाँ, अभी आगे देखते हैं। एक स्यात जघन्य की बात हम पढ़ते थे तीसरी लाइन में, अब यहाँ क्षपित कर्मांशिक जीव लेना है। यानी जो हमने देखा था ना, उसके भी बहुत सारी कंडीशंस है, एक इंद्रियों में लंबा काल रहा, फिर त्रसों में आया, सम्यक तो बहुत बार प्राप्त किया, छूटा, पंचम गुणस्थान वर्ती में बहुत बार गया, अनंत अनुबंधी की विसंयोजना की, चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात है, और दो तीन बार उसको सूक्ष्म निगोद में भी भेजा था। ऐसा जो क्षपित कर्मांशिक जीव, वो निगोद से निकला, कोई एक इंद्रिय का भव धारण करके फिर मनुष्य में आया और उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, और उसकी आयु भी छोटी लेकर आया, इस तरह सारी कंडीशन हमने देखी थी, तो उसके क्षीण कषाय के अंतिम समय में जघन्य द्रव्य पाया जाता है। स्यात अजघन्य है, अब जो जघन्य नहीं वो सारा क्या है, अजघन्य। तो अभी जब हमने जो उत्कृष्ट वाला देखा था नारकी, उसको क्या कहेंगे, जो गुणित कर्मांशिक वाला नारकी देखा था उसको अजघन्य कहेंगे, जो जघन्य ने वो सारा अजघन्य, और जो उत्कृष्ट ने वो सारा अनुत्कृष्ट। यानी चार को एक एट अ टाइम नहीं लेना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट इतना ही कंपैरिजन करना। यानी जो जघन्य वाला है उसको भी अनुत्कृष्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, और जो उत्कृष्ट है वो अजघन्य की कैटेगरी में आ जाएगा। तथेत स्यात् अजगण्य है, क्योंकि शुद्ध ने की अपेक्षा क्षपित कर्मांशिक जीव के क्षीण कषाय के अंतिम समय को छोड़कर अन्यत्र अजगण्य द्रव्य पाया जाता है। ये शुद्ध ने की अपेक्षा नहीं, वो मेरे ख्याल की अजगण्य, उसमें कोई भेद किए बिना सारे अजगण्य होते हैं ऐसा मुझे लगता है। शुद्ध ने या द्रव्यार्थिक ने ऐसा होगा। स्यात् साधी है, साधी किसको कहा? हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट आदि पदों का एक रूप से अवस्थान नहीं रहता। यहाँ ज्ञानावरणी को स्यात् साधी कहा और वो साधीपना उत्कृष्ट आदि पदों की अपेक्षा साधीपना का। उत्कृष्ट आदि जो पद होते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ स्यात् साधीपना बता रहा है। शंकाकार पूछते हैं, द्रव्यार्थिक ने में उत्कृष्ट आदि पद विशेष कैसे संभव है? द्रव्यार्थिक ने आप ज्ञानावरणी की बात कर रहे हो और फिर उसमें उत्कृष्ट की अपेक्षा लगा कर साधी क्यों कहते हैं? ये उनका प्रश्न है। अगर उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होता तो उसकी अपेक्षा आप साधी कह सकते हो, यहाँ क्यों साधी लगाया? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म बंध साधी है कि अनादि है उसकी बात नहीं चल रही है। ब्रह्मा ज्ञानावरणी का बंध हम साधी कह सकते थे, कब? ग्यारहवें से उतर कर आया तब। उसकी अपेक्षा नहीं, द्रव्य की अपेक्षा। ज्ञानावरणी का द्रव्य अनादि से ही बंधा हुआ है तो सत्ता में तो है ना वो, तो उसको साधीपना कैसे होगा ये कहना चाहते हैं। उसके उदय की अपेक्षा ग्यारहवें में से दसवें में आया तो साधी हो सकता है, परंतु यहाँ वो अपेक्षा नहीं ली। इन्हें सभी वो ही बता रहे हैं कि यहाँ जो गया आवाज, हेलो हेलो हेलो, यहाँ जो उत्कृष्ट आदि पद है उसकी अपेक्षा से यहाँ साधी समझना चाहिए। इसीलिए शंकाकार ने पूछा, जब ज्ञानावरणी की सामान्य से बात कर रहे हो तो मैं उसमें उत्कृष्ट आदि पद कैसे आ गए? ये उनका प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि अनेक को विषय करने वाले नैगम नय में सामान्य और विशेष दोनों संभव है, क्योंकि नैगम नय दोनों का विषय करता है इसलिए उसमें विशेष की भी अपेक्षा लग सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं आता। कहते स्यात् अनादि है क्योंकि जीव और कर्म के बंध सामान्य को सादी मानने में विरोध आता है। वहां सादी क्यों कहा था? एक एक पद की अपेक्षा सादी कहा था। और यहाँ अनादि क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव और कर्म का बंध तो अनादि से है इसलिए वो अनादि है। स्यात् ध्रुव है क्योंकि अभव्यों और अभव्य समान भव्यों में ज्ञानावरण सामान्य का विनाश नहीं होता इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं। स्यात् अध्रुव है क्योंकि केवली में ज्ञानावरण का विच्छेद पाया जाता है अथवा उक्त चार पदों का शाश्वत रूप से अवस्थान नहीं रहता। यानी सामान्य से ज्ञानावरण की बात करेंगे वो भी अध्रुव है क्योंकि केवली कोई जीव उसका विनाश करके मोक्ष चले जाते हैं। और दूसरी पदों की अपेक्षा अगर कहना है तो उत्कृष्ट या जघन्य या अनुत्कृष्ट जघन्य, हाँ, तो उसकी अपेक्षा तो अध्रुव है ही है। स्यात् युग्म है, अब यहाँ युग्म का अर्थ बता रहे हैं। युग्म और समय एकार्थवाचक शब्द है। वह कृत युग्म और बादर युग्म के भेद से दो प्रकार के, अभी हमने प्रस्तावना में देखा था ना उसके, उनमें से जो राशि चार से अवहृत होती है वह कृत युग्म कहलाती है। यानी चार से पूरा युग्म का अर्थ है सम संख्या, जिस सम संख्या को चार से भाग देने पर निशेष भाग जाता है उसको कृत युग्म कहेंगे, और जिस राशि को चार से अवहृत करने पर दो रूप शेष रहते हैं वह बादर युग्म कही जाती है। जैसे 14 संख्या है सम संख्या, चार से भाग देने पर दो बाकी रहते हैं इसलिए उसको बादर युग्म कहा। अब ओज राशि के भी दो भेद किए, जिस राशि को चार से अवरुद्ध करने पर एक अंश शेष रहता है वह कलियोज राशि है। जैसे हमने देखा था कि 13 को हमने चार से भाग दिया तो 12 माइनस हो गए और एक बाकी रहा, वो कलियुग हो गई। और जिस राशि चार, जिसको चार से अवरुद्ध करने पर 3 अंक शेष रहते हैं, वह तेजोज राशि है। हमने देखा कि 15 को 3 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, तो 3 शेष रहे। कहां भी है, ऊपर गाथा है, 14 बांदर जुम्मम 16 कद जुम्म मित कलियोजो 13 तेजो जो खलु पन्नर सेवम खुविन्नेया। यहाँ 14 को बादर युग्म, 16 को कृतयुग्म, 13 को कलिओज और 15 को तेजोज राशि जानना चाहिए। केवल इतनी ही नहीं, ये तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल करके बताई है, नहीं तो केवल बस ये 14 कोई बादर युग, 14 इटसेल्फ बादर युग में, बाकी ऐसा नहीं है। कोई भी संख्या लो, सम संख्या, और उसमें भाग देने पर 2 बाकी रहते हैं, वो सारी संख्या बादर युग में, ये इसका अर्थ होता है। इसलिए ज्ञानावरण में समान द्रव्य की संभावना होने से युग्मत्व घटित होता है, यानी ज्ञानावरण की जो संख्या है परमाणुओं की, तो कभी विषम भी हो सकती, कभी सम भी हो सकती है, तो उसमें युग्म भी घटित होगा और ओज भी घटित होगा, तो युग्मत्व घटित होता है। स्यात ओज रूप है, क्योंकि कहीं पर उसमें विषम संख्या युक्त द्रव्य पाया जाता है। स्यात ओम है, यहाँ ओम शब्द का अर्थ देख, क्योंकि कदाचित प्रदेशों का अपचय देखा जाता है। स्यात विशिष्ट है, अपचय ने वो खिर जाना, अधिक निकल जाना, हम थे ना संचय और अपचय, संचय से विरुद्ध अपचय होता है। हाँ ज्यादा, हाँ इना रकम, ये ओम का अर्थ यहाँ लिखा है ना, क्योंकि अपचय ने कम होना, हाँ अपचय देखा था। स्यात विशिष्ट है, विशिष्ट में कदाचित व्यय की अपेक्षा अधिक आय देखी जाती, उसको विशिष्ट ने और बढ़ गया ना वो द्रव्य, अपचय होना ने व्यय होना, कम होना, खिर जाना, और यह व्यय की अपेक्षा आय ज्यादा है। स्यात नो ओम नो विशिष्ट है, क्योंकि प्रत्येक पदभेद की विवक्षा होने पर वृद्धि हानि नहीं देखी जाती, यानी एक पद कहीं कहेंगे तो उसकी अपेक्षा कोई वृद्धि हानि नहीं है। इस प्रकार प्रथम सूत्र की प्ररूपणा की है, यानी सामान्य से देखेंगे तो वृद्धि हानि देखी, परंतु यहाँ पदों की अपेक्षा लगाएंगे तो उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट ही होता है, उसमें वृद्धि हानि नहीं होगी। अब द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते, द्वितीय सूत्र हमने क्या, हमने और 13 सूत्र बनाए, तो उसमें कौन सा सूत्र होगा, 13 पद में से पहला जो उत्कृष्ट पद है उस पर 12 प्रश्न हो गए, और तो उसका उत्तर डायरेक्ट बता रहे हैं। अब द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते हुए इस प्रकार है, उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना। अब उस पर वो जघन्य होती है कि अजघन्य, सभी प्रश्न लगाएंगे, तो जो उत्कृष्ट है उसको जघन्य कह सकते हैं क्या, उत्कृष्ट को जघन्य कैसे कहेंगे, नहीं उत्कृष्ट पर लगाना है, उत्कृष्ट पर सभी पद लगा लो, कौन कौन से पद है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता, हाँ तो अनुत्कृष्ट नहीं है, क्या वो अजघन्य है, अजघन्य है, क्योंकि जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य में आ जाएगा, पर उत्कृष्ट को अनुत्कृष्ट नहीं कह सकते, उत्कृष्ट को जघन्य नहीं कह सकते, पर उत्कृष्ट को अजघन्य कह सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक, 100 ये उत्कृष्ट संख्या है, 1 ही जघन्य है, तो जघन्य कौन सी है, 1, तो 1 को छोड़कर बाकी 2 से लेकर 100 तक सारी अजघन्य है, और उत्कृष्ट 100 है, तो वो उत्कृष्ट है, तो उसको छोड़कर 1 से लेकर 99 तक सारे अनुत्कृष्ट कहेंगे, इसलिए जो उत्कृष्ट है वो जघन्य नहीं है, अजघन्य है, परंतु उत्कृष्ट है तो अनुत्कृष्ट नहीं हो सकते। देखो यहाँ क्या कहा, उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने प्रतिपक्ष रूप से उसका अस्तित्व मानने में विरोध आता है। क्योंकि उत्कृष्ट और जघन्य ये प्रतिपक्षी है, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ये भी प्रतिपक्षी है, ख्याल में आई बात? पर जो उत्कृष्ट है उसको अजघन्य तो कह ही सकते हैं। तो कहते स्यात अजघन्य है, क्योंकि अजघन्य में जघन्य से ऊपर के शेष सब द्रव्य विकल्प सम्मिलित, द्रव्य विकल्प यानी द्रव्यों की जो पॉसिबिलिटीज अलग अलग, इसलिए उसमें उत्कृष्ट भी संभव है। अभी हमने एक से सौ तक जो बात घटित करके दिखाई थी वही बात यहाँ समझना। स्यात सादी है, ये उत्कृष्ट संख्या कभी अनादि से नहीं हो सकती है। तो स्यात सादी है क्योंकि अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य की उत्पत्ति होती है, यानी जो गुणित कर्मांशिक जीव हमने देखा सातवें नरक का, उसके पहले वो अनुत्कृष्ट था, वही उत्कृष्ट बन गया तो उसके आदि हो गई, उसलिए आदि कहा, पर उसको अनादि नहीं हो सकता, इसलिए उसकी बात ही नहीं किया। क्या वो ध्रुव रूप से रह सकता है? उत्कृष्ट 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 तो कभी नहीं रहेगा, इसलिए उसको अध्रुव लिया, स्यात अध्रुव है, क्योंकि यह उत्कृष्ट पद सर्वकाल अवस्थित नहीं रहता। स्यात तेजो जो है, तेजोज का अर्थ क्या, ओज का अर्थ हमने क्या कहा था, विषम, विषम, और इसमें तीन बाकी रहते हैं, ऐसा विषम लिया था, यानी वो पंद्रह जैसी, फॉर एग्जाम्पल पंद्रह। तो स्यात तेजो जो है क्योंकि इससे चार से अवरुद्ध करने पर तीन रूप अवस्थित रहते हैं चाहिए, नहीं शब्द निकाल दो, ऊपर लिखा ना, सिया तेजो जो चदुही अवरिज्य माने तिन्नी रूवा व ठाणा दो, यानी तिन्नी रूप यानी तीन रूप अवस्थित रहते हैं, बाकी रहते हैं, अवस्थित रहते हैं चाहिए, नहीं रहते, नहीं शब्द निकाल दो। ये नए पुस्तक में क्या है? हाँ नहीं, वो करेक्शन करवाया था ये, इसका भी हमने, अवस्थित रहते हैं। स्यात नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि जब उत्कृष्ट कह दिया तो उत्कृष्ट में क्या टोटल मैक्सिमम संख्या ही बता दी, उसमें वृद्धि हानि कैसे होगी, इसलिए कहते स्यात नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि मानने में विरोध आता है। इस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना पांच पद रूप है, किस रूप है वो बता दिया। देखो देखो फिर से निकालो पहला पेज, 23वां पेज, उत्कृष्ट पद की बात है तो उसमें शेष 12 प्रश्न पूछने चाहिए थे, 12 पद होते हैं, तो उसमें से क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते तो अभी हम क्या नहीं होते हम देखेंगे, जघन्य नहीं है, हाँ जघन्य नहीं होता, जो उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट नहीं होता, वो अनादि नहीं हो सकता, वो ध्रुव नहीं हो सकता, वो युग्म नहीं होगा, वो ओम भी नहीं होगा और वो विशिष्ट भी नहीं होगा, जो बाकी क्या होता है उन्होंने बता दिया, यानी क्या नहीं होता है तो सात पद उसके नहीं होगे तो पांच पद होगे, समझ में आई ये बात, यानी इस तरह से हर एक पद पर हम लगाने वाले, वो बाद में उसका टेबल भी बताएंगे, हाँ टेबल आगे चलकर, पर पहले हम समझेंगे तो टेबल समझने में आसान होगा। पांच पद है, देखो टेबल आपको देखना है क्योंकि क्यूरियोसिटी होगी ना, पेज नंबर 30 पर ले लेना, अभी देखो उत्कृष्ट पद पर लगाने हैं, ये किस पर लगाना है वो पद के लेफ्ट साइड का कॉलम है उसमें पदों के नाम बताए हैं। अब उत्कृष्ट में देखो टोटल 13 में से हाँ 8, हाँ तो उत्कृष्ट तो इटसेल्फ है ही, तो उसमें अनुत्कृष्ट नहीं है, जघन्य नहीं है, अजघन्य है, सादी है, अनादि नहीं है, ध्रुव भी नहीं है, अध्रुव है, ओज है पर युग्म नहीं है, ओम भी नहीं है और विशिष्ट भी नहीं है, नो ओम है। अभी बताए ना, ओम यानी वो हानि रूप, क्योंकि उत्कृष्ट है उसमें हानि या वृद्धि कुछ नहीं होगी। हाँ, व्यय और आय ऐसा लिया। तेजोज मैंने तीन बाकी रहते हैं। ओज का अर्थ होते विषम संख्या, ओम अलग बात है, ओज अलग बात है। ओज का अर्थ होते व्यय रूप होना, उसमें उन्होंने क्या शब्द वापरा था उसमें, ओम, ओज का अर्थ होते विषम। हाँ, युग में यानी सम, ओम ओम अभी बताया था 23 नंबर पेज पर, अभी हमने देखा था ओम का अर्थ, प्रदेशों का अपचय कहा था, अपचय होना ने खिर जाना, हानि होना, आणि विशेष विशिष्ट है, हम कहते विशेष है उसमें अधिक होता है। नोम जो हानि नहीं वृद्धि नहीं है वैसा रहता है, जो उत्कृष्ट पद है वो वैसा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे फिर इसको दोबारा देखेंगे अनुत्कृष्ट पद पर। अब पेज नंबर अपना जो चल रहा था ना 24 चल रहा था ना, 24 पर आना। अब ज्ञानावरणी की जो अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना है, जो अनुत्कृष्ट है तो वो कैसी, स्यात जघन्य है, क्योंकि जो उत्कृष्ट नहीं है वो सारा ही अनुत्कृष्ट कहलाता है। तो जघन्य को भी हम अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट विकल्प को छोड़कर अधस्तन शेष समस्त विकल्प रूप अनुत्कृष्ट पद में जघन्य पद भी संभव है। जैसे हमने देखा था सौ को हमने उत्कृष्ट माना तो एक भी अनुत्कृष्ट हो जाएगा और 99 तक सभी अनुत्कृष्ट हो जाएगी। स्यात अजघन्य है क्योंकि अनुत्कृष्ट पद अजघन्य पद का अविनाभावी है, यानी अजघन्य भी कह सकते हैं। अजघन्य कहने से एक उत्कृष्ट को छोड़कर बाकी सभी अजघन्य ही हो जाते हैं। तीसरी स्यात सादी है, यानी जो अनुत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकता, उत्कृष्ट के साथ उसका विरोध है, वो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है, ख्याल में आई ना बात। अब कहते स्यात सादी है क्योंकि उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट की उत्पत्ति होती है और अनुत्कृष्ट से भी अनुत्कृष्ट की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी वो पहले उत्कृष्ट था बाद में वही अनुत्कृष्ट हो गया, क्योंकि वो तो सातवें नरक का गुणित कर्मांशिक था, वहां मैक्सिमम पॉसिबल थी, बाद में तो उसमें से कुछ खिर गए तो अनुत्कृष्ट भी हो गया वो, इसलिए अनुत्कृष्ट पद सादी भी हो सकता है। तो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट की उत्पत्ति होती है और अनुत्कृष्ट से भी अनुत्कृष्ट की उत्पत्ति होती है। अनादि नहीं है क्योंकि यहाँ अनुत्कृष्ट रूप पद विशेष की विवक्षा है, कोई भी पद विशेष पद की बात है इसलिए उसको अनादि नहीं कह सकते। अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा होने पर भी अनादि नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट पद के होने पर सादित्व देखा जाता है। यदि कहा जाए इस पद का नित्य निगोदिया जीवों में अनादित्व प्राप्त हो जाएगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि वहां अनुत्कृष्ट पदों के पलटने से यह सादित्व पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, एक अनुत्कृष्ट से दूसरा अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, सारे अनुत्कृष्ट के जितने विकल्प है, इसलिए वहां उसको भी सादी कहेंगे, उसको अनादि नहीं है। नहीं है, देखो देखो क्या कहे, अनादिया न होदी ऊपर लिखा है, देखो चौथी लाइन में ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अनादि नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। अभी स्यात और ध्रुव है, क्या क्या है उसकी बात चल रही है। हमने नंबरिंग किया था, स्यात जघन्य है उसको एक नंबर दिया था, स्यात अगर जघन्य है उसको दो नंबर दिया था, स्यात सादी है तीन नंबर दिया था। अब चार नंबर पर नीचे से तीसरी लाइन, स्यात अध्रुव है क्योंकि अनुत्कृष्ट रूप एक पद विशेष का सर्वदा अवस्थान नहीं रहता। फिर स्यात ओज है, अनुत्कृष्ट के कितने ही संभव है, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया एक से सौ तक जो अनुत्कृष्ट है। हाँ, वो एक से लेकर 99 तक कोई सम राशि है, कोई विषम राशि है, तो उसमें सभी विकल्प संभव है। इसलिए कहते स्यात ओज है क्योंकि अनुत्कृष्ट से नहीं, अनुत्कृष्ट के जितने भेद है उनमें से किसी भी पद विशेष में विषम संख्या का सद्भाव पाया जाता है। अभी हमने जो एक से लेकर 99 तक सारे अनुत्कृष्ट कहे तो उसमें कोई राशियां तो विषम हो ही जाती है, कोई सम होगी, इसलिए ओज भी हो गए और युग्म भी हो गए, इसलिए स्यात ओज लिखा है। लास्ट लाइन 24 पेज पर स्यात युग्म है क्योंकि कहीं पर दोनों प्रकार की सम संख्या देखी जाती है। दोनों प्रकार के युग्म में हमने कृत युग्म और बादर युग्म देखे थे, वो भी वहां पाई जाएगी। ऐसी संख्या जिसे चार से विभक्त करने पर कुछ भी शेष न रहे या दो अंक शेष रहे, फॉर एग्जाम्पल हमने 16 और 14 देखे थे, तो ये हो सकता है। अब 25 पेज पर स्यात ओम है, ये सातवां पॉइंट है क्योंकि कहीं पर हानि होने से उत्पन्न हुआ अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है। क्या कहा, ये जो पद हुआ है वो हानि होकर हुआ, ये हो सकता है। यानी कहीं पर मान लेते ना 80 थे परमाणु और वो घटकर 60 हो गए, तो क्या हुआ, ओम हो गए। स्यात विशिष्ट है, आठवां नंबर, क्योंकि कहीं पर वृद्धि होने से उत्पन्न हुआ अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है। यानी वो वृद्धि होकर भी अनुत्कृष्ट ही रहा क्योंकि उत्कृष्ट तक नहीं पहुंचा, तो उसको विशिष्ट कहेंगे। स्यात नोम नो विशिष्ट है क्योंकि अनुत्कृष्ट रूप जघन्य पद की अथवा अनुत्कृष्ट रूप पद विशेष की विवक्षा होने पर वृद्धि और हानि नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं, जघन्य जब कहते हैं उसमें वृद्धि हानि सवाल नहीं है, जघन्य तो जघन्य रहता है, परंतु बीच वाले जो कोई संख्या है विशिष्ट संख्या की अपेक्षा उसमें वृद्धि हानि नहीं कहेंगे हम, अपेक्षा सहित वो बात हम देखते, इसलिए उसको नोम नो विशिष्ट भी कह सकते हैं। इस प्रकार ज्ञानावरण अनुत्कृष्ट वेदना नौ पद रूप है, इस प्रकार तृतीय सूत्र की प्ररूपना की। अब वो 30 नंबर का टेबल देखो, वहां नौ पद बताए परंतु उसका अपना पद लेकर 10 भी कह सकते हैं। यहां उसकी अपेक्षा लिए उन्होंने, जो दूसरा नंबर अनुत्कृष्ट पद है वो उत्कृष्ट नहीं है, अनुत्कृष्ट तो अपने रूप अनुत्कृष्ट है ही, उसको अगर गौण करेंगे तो बाकी नौ पद रह जाते हैं। जो तो अनुत्कृष्ट है वो जघन्य होता है, अजघन्य भी होता है, अनुत्कृष्ट सादी भी है, पर अनुत्कृष्ट अनादि नहीं है, अनुत्कृष्ट ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, अध्रुव है, ओज है, युग्म भी है, ओम भी है, विशिष्ट भी है और नोम भी है। ये समझ में ना कैसे लगाया, अब जघन्य को लगा लेते हैं। 25 पृष्ठ बनाना, जघन्य ज्ञानावरण वेदना। अभी जो जघन्य वो उत्कृष्ट नहीं हो सकती, पर जघन्य है वो अनुत्कृष्ट तो कह ही सकते उसको, हम उसको अजघन्य भी नहीं कह सकते। तो जघन्य ज्ञानावरण वेदना कथंचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि सामान्य जघन्य पद से अनुत्कृष्ट रूप जघन्य पद में कोई अंतर नहीं है। दूसरा पॉइंट, कथनचित सादी है क्योंकि अजघन्य से जघन्य पद उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने देखी थी, वो कितने बार सम्यक हुआ, क्या क्या श्रेणी चढ़ा वगैरह। तो ऐसा जो क्षपित कर्मांशिक है उसके पूर्व में वो अजघन्य से जघन्य हुआ था, और वो जघन्य भी कब देखा था हमने, बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में क्षपित कर्मांशिक वाले को, उसके पहले वो अजघन्य ही था इसलिए वो सादी हुआ। कथनचित अध्रुव है क्योंकि वह शाश्वत रूप से नहीं पाया जाता। कथनचित युग्म है, यानी क्षपित कर्मांशिक की बात जो वहां ली है वो कथनचित युग्म है क्योंकि उसे चार से अवरुद्ध करने पर कोई अंक शेष नहीं रहता, यानी वो तो अन्य उसमें ओज वगैरह होते हैं ऐसा लिया ही नहीं है, युग्म ही की बात की है वहां पर, क्योंकि संख्या कैसे निकालना होगा वो तो जयधवला में ये सब प्रदेश विभक्ति के अधिकार में ये होता है सब, कितने पॉसिबल है क्या उनको पता है ना, कौन सी युग्म राशि होती कौन सी क्या है। ये कहाँ हुआ गया, कथनचित युग्म है। कथनचित नो ओम नो विशिष्ट है, पांचवा पॉइंट, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं होती, क्योंकि जघन्य जब कहा कह दिया ना तो जघन्य जो मिनिमम बता दिया है उसकी बात है, तो वो क्या क्या नहीं होती है क्या क्या होती है उसकी बात है। इस प्रकार जघन्य वेदना पांच प्रकार की है, अथवा स्वपद के साथ छह प्रकार की, समझ में इसका अर्थ, स्वपद यानी जघन्य वेदना जघन्य होती है ऐसा अगर कहेंगे तो छह कहेंगे, ऐसा हर एक में लगाना, जहां जहां हमने नौ पद होते वहां नौ या दस होते हैं, पांच या छह होते, इस तरह से समझना। अब तीस पृष्ठ देख लो, ये तीसरा कॉलम है, तीसरी लाइन है ना, जघन्य पद, पद के नीचे जहां जघन्य लिखा है वो जो जघन्य वो उत्कृष्ट नहीं होता, पर जघन्य वो अनुत्कृष्ट कहेंगे उसको, जघन्य तो जघन्य कह ही देते हैं, जघन्य वो अजघन्य नहीं है, पर जघन्य है वो सादी है, क्योंकि बारहवें के अंत में जाकर वो जघन्य हुआ था किसी का, जघन्य वो अनादि नहीं हो सकता, जघन्य वो ध्रुव नहीं हो सकता क्योंकि उसका अभाव करके जीव ऊपर चले जाएंगे तेरहवें में, जघन्य वो अध्रुव होता है, जघन्य ये ओज राशि नहीं हो सकती, वो युग्म राशि है क्योंकि वो तो आगम के द्वारा उसका कथन आता है, वो ओम राशि है क्योंकि जघन्य का है व्यय रूप होकर वो ओम हो गई है, सॉरी ओम नहीं है, ओम है नहीं कहा, ओम नहीं है क्योंकि नो ओम नो विशिष्ट थी वो ओम नहीं क्योंकि वो फिक्स राशि है ना, और वो विशिष्ट राशि भी नहीं है, तो क्या है, नो ओम नो विशिष्ट है क्योंकि वो जघन्य है, मिनिमम पॉसिबल है उसका एक ही विकल्प है, उसमें कोई अन्य विकल्प नहीं होते, नहीं हानि वृद्धि वाला वो नहीं है। इस तरह से यहाँ हमने ये जघन्य में पांच, या उसको जघन्य का इटसेल्फ ले लो तो छह हो जाते हैं। अब आना 26 पेज पर, ये हो गया क्या अपना, नहीं ये तीन लाइन नहीं पढ़ ली, स्वपद की अपेक्षा छह प्रकार की है, आशय यह है कि जघन्य वेदना अन्य अजघन्य आदि रूप पदों की अपेक्षा पांच प्रकार की है, हाँ, और जघन्य पद को जघन्य रूप मानकर मिला देने पर छह प्रकार के, इस प्रकार चतुर्थ सूत्र की प्ररूपना की। 26 नंबर के पेज पर आना। अब अजघन्य ज्ञानावरण वेदना, अजघन्य किसको कहेंगे, जो जघन्य नहीं वो सब अजघन्य आ जाएगा, तो उसमें वो उत्कृष्ट को भी अजघन्य कहेंगे। तो देखो कथनचित उत्कृष्ट है क्योंकि जब उत्कृष्ट पद अजघन्य रूप से विवक्षित होता है तो वह ओग उत्कृष्ट पद से पृथक नहीं पाया जाता। कथनचित यानी जो ओग का उत्कृष्ट है वही अजघन्य में उसको उत्कृष्ट पद भी उसमें शामिल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कथनचित अनुत्कृष्ट है क्योंकि वह उसका अविनाभावी है। यानी वो अजगण्य और अनुत्कृष्ट पद एक दूसरे के लिए, स्यात अनुत्कृष्ट को अजगण्य भी कहेंगे, अजगण्य को अनुत्कृष्ट भी कहेंगे। तीसरा पॉइंट, कथनचित सादी है क्योंकि परिवर्तन हुए बिना अजगण्य पद विशेषों का अवस्थान नहीं होता। यानी जो अजगण्य है वो तो परिवर्तित होते रहते, क्योंकि अजगण्य के विकल्प बहुत है ना, तो उसमें वो परिवर्तन चलता रहता है। कथनचित अध्रुव है चौथा पॉइंट, इसका कारण सुगम है क्योंकि वो अजगण्य था, वो जगण्य होकर वो नाश भी हो जाएगा, अध्रुव कहते हैं। कथनचित ओज है, कथनचित युग्म है। जैसे हमने अनुत्कृष्ट में सब लिखा लेते, सम भी राशि होती है विषम भी होती है, वैसे यहाँ पर भी कथनचित ओज है, कथनचित युग्म है। कथनचित करना, कथनचिन हुआ है, कथनचित ओम है और कथनचित विशिष्ट है, इनका कारण सुगम है क्योंकि जो बहुत सारे विकल्प है उसमें कम होकर भी हो सकता है, अधिक होकर भी हो सकता है। कथनचित नोम नो विशिष्ट है क्योंकि जिसकी हानि वृद्धि नहीं हुई, ऐसे पद विशेष की विवक्षा होने से यह विकल्प पाया जाता है। देखो हमने वो अनुत्कृष्ट में भी 9 पद देखे थे और यहाँ अजगण्य में भी 9 लगते हैं। इस प्रकार अजगण्य के 9 अथवा 10 भंग है, 10 यानी उसको स्वपद पकड़कर, यह 5वें सूत्र का अर्थ है। देखो 30 पेज पर देख लो अभी, जिसको अजगण्य जो है, अजगण्य उसको उत्कृष्ट स्यात उत्कृष्ट भी कहेंगे, उसी को अनुत्कृष्ट भी कहेंगे, वो अजगण्य वो जगण्य नहीं हो सकता। अजगण्य तो अजगण्य है ही, वो उसका स्वपद है। अजगण्य वो सादी होता है, अनादि नहीं होता, ध्रुव भी नहीं होता, अध्रुव है, ओज भी है, युग्म भी है, ओम भी है, विशिष्ट भी है और नोम भी है। इस तरह से सब पद लगाए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, सादी ज्ञानावरण वेदना। जिस ज्ञानावरण वेदना को हम सादी कहते हैं उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है और कथनचित अजघन्य है, ये सब लगेंगे उसमें। कथनचित अध्रुव है, ध्रुव नहीं है क्योंकि सादी को ध्रुव मानने में विरोध है। सादी का अर्थ है वो पर्टिकुलर पद नहीं था और हुआ, तो उसको ध्रुव नहीं कह सकते। कथनचित ओज है, कथनचित युग्म है, कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है और कथनचित नो ओम, ओम करो उसको, नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार सादी वेदना के 10 अथवा 11 भंग है, उसका स्वयं का पद इंक्लूड करेंगे तो 10 या 11 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य चारों को लिया था ना, इसलिए यहाँ 11 पद बन जाते हैं। देख लो 30 नंबर का पेज सादी वाला है, वो पहले चारों ही है उसके, उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी जघन्य भी अजघन्य भी। वो सादी होता है पर अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि सादी हमारा पद है ना, उसको अनादि कैसे कहेंगे। वो ध्रुव भी नहीं है, अध्रुव है, ओज है, युग्म है, ओम है, विशिष्ट है, नो ओम है। नहीं, हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो जो भगवान की वाणी में आया है। अब ये अजगण्य अनुत्कृष्ट सादी में तो सब लग सकते, क्योंकि सारे विकल्प बीच वाले विकल्प उसमें हो सकते हैं, तो उसमें सब कुछ पॉसिबल है। केवल वो क्षपित वाला और गुणित वाला जो बताया है, गुणित कर्मोश, वो तो भगवान ने जो जाना है, इसलिए वहां तो हमने देखा था ना जघन्य और उत्कृष्ट में जो देखी थी, तो उत्कृष्ट राशि ओज वाली थी, युग्म वाली नहीं थी, और जघन्य राशि युग्म वाली थी। ख्याल में आई ना बात, वो तो हम तो आगम से ही उसका निर्णय, हम उसका कुछ निर्णय वगैरह नहीं कर सकते, हम जान सकते उसको आगम से। ये शादी हो गया अभी, अनादि ज्ञानावरणी वेदना 26 पृष्ठ पर अनादि कह दिया उसको, तो अनादि ज्ञानावरणीय वेदना कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, कथंचित जघन्य है, कथंचित अजघन्य है और कथंचित सादी है। देखो जो सादी था उसको अनादि का विरोध माना, परंतु अनादि के लिए सादी कह रहे हैं, इसलिए प्रश्न क्या है, अनादि वेदना में सादित्व कैसे संभव है? नहीं, क्योंकि जो वेदना सामान्य की अपेक्षा अनादि है उसके उत्कृष्ट आदि पदों की अपेक्षा सादी होने में विरोध नहीं है। ये उसमें कोई अन्य अन्य पद की अपेक्षा उसको सादी हो सकता है। कथंचित ध्रुव है, क्योंकि वेदना सामान्य का विनाश नहीं होता। कथंचित अध्रुव है, क्योंकि पद विशेष का विनाश देखा जाता है, यानी अपेक्षा सहित ही बात घटित हो रही है। कथंचित ओज है, कथंचित युग्म है, कथंचित ओम है, कथंचित विशिष्ट है और कथंचित नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार अनादि वेदना के 12 भंग है अथवा 13 भंग है, उसमें सभी लगाए देख लो 13 नंबर के पृष्ठ पर अनादि के सामने सभी विकल्प संभव कर दिए उन्होंने, ध्रुव अध्रुव सब ले लिए। नीचे ध्रुव में वाले भंग में भी सभी है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम 27 पृष्ठ पर ध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, कथंचित जघन्य है, कथंचित अजघन्य है, कथंचित सादी है, कथंचित अनादि है, कथंचित अध्रुव है, इसको अध्रुव भी क्या, ध्रुव वाले को भी अध्रुव कहा, कथंचित ओज है, कथंचित युग्म है, कथंचित ओम है, कथंचित विशिष्ट है और कथंचित नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार ध्रुव पद के 12 अथवा 13 भंग है। यह 8वें सूत्र का अर्थ है। अब अध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, कथंचित जघन्य है, कथंचित अजघन्य है, कथंचित सादी है, अनादि नहीं कहा, कथंचित ओज है, कथंचित युग्म है, कथंचित ओम है, कथंचित विशिष्ट है, कथंचित नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार अध्रुव पद के 10 अथवा 11 भंग होते हैं। यह 9वें सूत्र का अर्थ है। देखो ये अभी हमने अध्रुव वाला देखा ना, जो अध्रुव है वो अनादि नहीं है और ध्रुव नहीं है, बस इसमें 2 नहीं लिए, बाकी सब लिए। यह 9वें सूत्र का अर्थ है। 9वें सूत्र ने 8 पद हो गए अभी यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिनली ज्ञानावरण इटसेल्फ एक लिया था, इसलिए सूत्र 9वां है, पद 8 हो गए अभी। अब ओज ज्ञानावरणीय वेदना, यानी वो विषम वाली, कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि उत्कृष्ट वाला भेद उन्होंने ओज तो कहा ही था, स्वयं ही कहा था, अनुत्कृष्ट में भी ओज तो हो ही सकते हैं ना। कथंचित अजघन्य है, क्योंकि जघन्य वाला युग्म वाला देखा था हमने, इसलिए अजघन्य हो सकता है। कथंचित सादी है, अनादि को नहीं लिया। कथंचित अध्रुव है, ध्रुव को भी नहीं लिया, क्योंकि कांस्टेंट वो नहीं रहेगा वैसा। कथंचित ओम है, कथंचित विशिष्ट है और कथंचित नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार ओज के 8 अथवा 9 भंग है। यह 10वें सूत्र का अर्थ है। देख लो, ओज की बात अभी हमने पढ़ी, यानी ओज जघन्य नहीं हो सकता। देखो वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो सकता है और जघन्य हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट में ओज राशि लेना है और जघन्य में युग्म राशि लेना है। यानी ओज उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो सकता है पर जघन्य नहीं हो सकता, वो सादी है परंतु अनादि नहीं है और ध्रुव भी नहीं है, और जो ओज है वो युग्म उसका विरोधी है, इसलिए जो ओज है वो युग्म नहीं हो सकता। अब आगे चलना, युग्म ज्ञानावरणीय वेदना पेज नंबर 28 जो युग्म वाली है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट वाली ओज वाली संख्या है, कथनचित जघन्य है, कथनचित अजघन्य है, कथनचित सादी है, अनादि नहीं लिया उसको, कथनचित अध्रुव है, ध्रुव भी नहीं लिया, कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है, कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार युग्म के 8 अथवा 9 भंग होते हैं। जैसे ओज के भी 8 अथवा 9 देखे, वैसे युग्म के भी 8 अथवा 9 ले लो। देखो 30 नंबर का पेज, ओज और युग्म में ओज में क्या था, जघन्य नहीं हो सकता, अनादि और ध्रुव नहीं हो सकता और युग्म नहीं हो सकता। युग्म में क्या लिया, उत्कृष्ट नहीं हो सकता क्योंकि उत्कृष्ट ओज वाली संख्या है, अनादि ध्रुव ये भी नहीं हो सकते और ये युग्म इसलिए ओज नहीं हो सकता। अब ओम ज्ञानावरण वेदना, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य है, क्योंकि ओम का अर्थ होता है क्या, वेरूप जो होती है, अपचय रूप, अपचय ने हीन हानि होकर होती है वो, तो कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य है, कथनचित सादी है, कथनचित अध्रुव है, कथनचित ओग है, कथनचित युग्म है। इस प्रकार विशिष्ट पद के, यानी विशिष्ट जो नाम का पद था, उसके 6 अथवा 7 भंग है। यह 13वें सूत्र का अर्थ है। यहाँ 6 आंकड़ा उन्होंने लिखा नहीं है, जैसे ऊपर लिखा था ना, वो आप ऐड करना, ब्रह्म 7 भंग है ना, उसके बाद 6 संख्या लिखना, जैसे हर एक सूत्र में उनके कितने पद होते हैं उसने बताए थे, कितने भंग होते हैं। देखो वो विशिष्ट देख लो 30 नंबर के पेज पर, विशिष्ट है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकता, अनुत्कृष्ट हो सकता है, जघन्य भी नहीं हो सकता, अजघन्य हो सकता है, सादी है परंतु अनादि नहीं है, ध्रुव भी नहीं है, अध्रुव है, ओज या युग्म दोनों हो सकता है, पर वो ओम नहीं है, क्योंकि जो विशिष्ट है वो ओम नहीं हो सकता, जो ओम है वो विशिष्ट नहीं सकता। विशिष्ट तो इटसेल्फ है, और नो ओम नो विशिष्ट भी नहीं है, क्योंकि विशिष्ट कह दिया तो वो अन्य नहीं हो सकता। अब जो नो ओम नो विशिष्ट, पेज नंबर 28 लास्ट लाइन, ज्ञानावरण वेदना, कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है, कथनचित अजघन्य, सब उसमें लगे, कथनचित सादी है, अनादि नहीं लिया, कथनचित अध्रुव है, उसको ध्रुव नहीं लिया, कथनचित ओज है, कथनचित युग्म है। इस प्रकार 8 भंग है। यह 14वें सूत्र का अर्थ है। इन पदों का अंक विन्यास, जो नोम पर भी उन्होंने लिखा ना, 8 या 9 पद बताए थे, वो नोम नो विशिष्ट में भी अनादि और अध्रुव नहीं था, ओम और विशिष्ट भी नहीं था। अब यहाँ ये सबको इकट्ठा यहाँ बता दिए किसमें कित कौन से पद होते हैं। ज्ञानावरण में तो 13 पद लगाए थे पहले सूत्र में, फिर उत्कृष्ट पर 5 पद, अनुत्कृष्ट पर 9 पद, जघन्य पर 5, अजघन्य पर 9, सादी में 10, फिर अनादि में 12, ध्रुव में 12, अध्रुव में 10, फिर ओज और युग्म में 8-8, और ओम और विशिष्ट में भी आठ आठ, सॉरी छ छ, और फिर नो ओम नो विशिष्ट में आठ। अब उसकी गाथा बता रहे यहाँ पर। तेरस पणनव पणनव दस दो बारस दसठ अठेव छठेवत सामन्न पदादि पद संभंगा। उसका अर्थ देखो, तेरह पद भंगा, तेरह पांच, नौ दस, दो बार बारह, दस आठ आठ, छ छ तथा आठ, ये सामान्य पद आदि के पद भंग है। सामान्य पद के तेरह थे, फिर आगे के जो क्रम से जो आगे है उसके पद भंग, उसके भंग ने वो कॉम्बिनेशन कितने कितने होते, उसमें कौन कौन से होते, एक एक में उसकी बात को यहाँ बता दी। एवं सत्तन्नम कम्माण एक ज्ञानावरणी एक कर्म पर लगा के बताया, इसी तरह से सभी कर्मों पर लगाना है। इसी प्रकार सात कर्मों के उत्कृष्ट आदि पद होते हैं, और हर एक पर ये इतने 169 प्रश्न करना है ये होते हैं ऐसा बस बताना है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की पद मीमांसा की है, वैसे ही शेष सात कर्मों की करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आयु के उत्कृष्ट किसको पद होगा उसमें डिफरेंस होगा, ये तो गुणित कर्मांशिक वाले को लिया है ना यहाँ पर। अन्य कर्मों में विशेषार्थ, पद मीमांसा का अर्थ है पदों का विचार करना, उसमें उत्कृष्ट आदि पदों का विचार किया जाता है, उसे पद मीमांसा अनुयोग द्वार कहते हैं। प्रकृत में मुख्यतया ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा उत्कृष्ट आदि तेरह पदों का विचार किया गया है। यद्यपि सूत्रकार ने कुल उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य इन चार पदों का ही निर्देश किया है, पर देशामर्शक भाव से इनके अतिरिक्त सादि अनादि ध्रुव अध्रुव ओज युग्म ओम विशिष्ट और नोम नो विशिष्ट ये नौ पद और लिए गए हैं। इस प्रकार कुल तेरह पद मिलाकर इनका ज्ञानावरण कर्म द्रव्य की अपेक्षा विचार किया गया है। सर्वप्रथम तो यह बतलाया गया है कि ज्ञानावरण कर्म में ये तेरह पद कैसे घटित होते हैं, मैंने कहा क्या घटित होता है, क्यों पद होते हैं वो बताया। फिर इसके बाद ज्ञानावरण कर्म को उत्कृष्ट आदि पदों में से एक एक रूप स्वीकार करके उसमें अन्य पद कहाँ कितने संभव है यह बतला गया है, और इस प्रकार इतने विवेचन के बाद अन्य सात कर्मों की भी इसी प्रकार प्ररूपणा करने की सूचना करके पद मीमांसा प्रकरण समाप्त किया गया है। अब आगे इन्हीं विशेषताओं को कोष्टक द्वारा बतलाया जाता है। ये विशेषार्थ में उन्होंने ये कोष्टक बना के बताया है। ज्ञानावरण के उत्कृष्ट आदि पदों में सूत्र बाद में है, उनके ये अवान्तर पद जिस प्रकार बतलाए हैं उसी प्रकार शेष सात कर्मों में भी घटित कर लेना चाहिए। सामान्य पद सर्वत्र तेरह ही है, इसलिए उनका अलग से कोष्टक नहीं दिया है। ये पूरा ही विशेषार्थ के ही प्ररूपना है। इस प्रकार ओजान योग द्वार गर्भित, यहाँ ओजानु थोग हुआ ना, ओजानु योग द्वार गर्भित पद मीमांसा समाप्त हुई। ऊपर क्या है, एवं अंतोखित योजानु योगद्वारा पद मीमांसा समत्ता। ओजानु योग क्यों कहा उसको, ओजानु योग द्वार गर्भित पद मीमांसा समाप्त हुई। अब ये पदमीमा हमने क्या देखा था, ये द्रव्य विधान की बात है ना, उसमें पहला पदमीमांसा हो गया, दूसरा स्वामित्व और फिर अल्प बहुत्व है। अब यहाँ स्वामित्व की बात चलेगी, इसलिए सूत्र पढ़ते हैं। सामित्तम दुविहम जहन्न पदे उपकस्य पदे। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य पद रूप और उत्कृष्ट पद रूप। उन्होंने पहले बताया था ना जघन्य उत्कृष्ट किसको होता है, उसकी सामान्य से चर्चा की थी उन्होंने। यानी वो तो मूल में पदमीमांसा स्वामित्व और अल्पभूतव कहा था ना, उसमें स्वामित्व की बात है। यहाँ पर पदे यह सप्तमी विभक्ति नहीं है, जहन्न पदे उक्कस पदे कहा था ना उन्होंने, क्योंकि उनके व्याकरण के नियम भी उन्होंने बताए थे। किंतु प्रथमा विभक्ति ही है, क्योंकि इसमें एकार का आदेश हो जाने से पदे यह रूप हो गया है। यहाँ पर पद स्थान का वाचक लेना चाहिए। ये जो पद जो है वो शब्द, यहाँ पद शब्द स्थान का वाचक लेना चाहिए। जिस स्वामित्व का जघन्य पद है वह जघन्य पद कहलाता है, और जिस स्वामित्व का उत्कृष्ट पद है वह उत्कृष्ट पद कहलाता है। और जघन्य व उत्कृष्ट स्वामित्व को छोड़कर दूसरा कोई स्वामित्व है नहीं, क्योंकि वह पाया नहीं जाता। यानी वो जघन्य पद का स्वामित्व कौन है, जिस स्वामित्व का जघन्य पद है, जिस स्वामित्व का उत्कृष्ट पद है। इस तरह स्वामित्व दो प्रकार का बताया, इसलिए शंकाकार कहते हैं अजघन्य और अनुत्कृष्ट द्रव्य के स्वामित्व के साथ चार प्रकार का स्वामित्व क्यों नहीं कहते हैं। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि अजघन्य और अनुत्कृष्ट द्रव्य के स्वामित्व का कथन करने पर भी जघन्य और उत्कृष्ट विधान को छोड़कर अन्य प्रकार से स्वामित्व की प्ररूपना नहीं बनती। इस कारण सूत्र में दो प्रकार का ही स्वामित्व है ऐसा कहा है। अथवा जहन्न पदे उपकस्य पदे यह सप्तमी विभक्ति का निर्देश है, इसलिए जघन्य पद में एक स्वामित्व है और उत्कृष्ट पद में दूसरा स्वामित्व है, इस तरह दो प्रकार का ही स्वामित्व है ऐसा सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। यानी वो तो उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना किसको होती है उसकी बात करेंगे। अब यहाँ प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर हम कल पढ़ेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। सामित्तेन उक्कस्य पदे नानावर्णीयेन दौवदो उक्कस्य कस्य। अब स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट पद का प्रकरण है। ज्ञानावरणीय वेदना द्रव्य से उत्कृष्ट किसके होती है, पहले तो गुणित कर्मांश वगैरह बता दिया था, अब यहाँ विस्तार से बता देंगे। तो ये प्रश्न का अर्थ बता देख लेते हम। 32 नंबर के पृष्ठ पर उत्कृष्ट पद में जो स्वामित्व स्थित है उसके साथ ज्ञानावरण का अनुगम करते हैं। ज्ञानावरणीय वेदना इस वचन का फल शेष वेदनाओं का प्रतिषेध करना है, क्योंकि ज्ञानावरण की बात चल रही है यहाँ पर। द्रव्य से इस निर्देश का फल क्षेत्रादि का प्रतिषेध करना है। द्रव्य से कहने पर परमाणु की संख्या लेनी है। उत्कृष्ट पद के निर्देश निर्देश चाहिए, निदेश निदेश हुआ है दो जगह। फल जघन्य आदि का प्रतिषेध करना है, क्योंकि हमें उत्कृष्ट बताना है तो जघन्य अनुत्कृष्ट अनजघन की बात नहीं है। यह आशंका सूत्र है, क्योंकि यहाँ पृच्छा का कोई कारण नहीं है, यानी प्रश्न नहीं है, परंतु ये उस संबंधी जो विकल्प है उसके भी किसके होते वो बताने जा रहे हैं। अब यही रुकेंगे, वो किसके होते हैं वो बात कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हो।